भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ ब्रज में रह रहे थे। उधर मथुरा में एक दिन कंस के पास नारद मुनि आए और नारद मुनि ने ऐसे सीधा कहना चालू किया कि कंस, तुमको मालूम है देवकी का आठवां पुत्र हुआ था। तो कंस चकित हो गया, पुत्र हुआ था? नहीं नहीं, पुत्र नहीं हुआ था, वो तो पुत्री हुई थी जिसका वध मैं करना चाहा और आकाश में उड़ गई, वो तो मेरी इष्ट देवी दुर्गा थी। नारद जी कहते नहीं नहीं, इतना भ्रम में मत रहो, वसुदेव आधी रात के समय अपने पुत्र को गोकुल में नंद के पास पहुंचाया है और तुमने सुना है यहाँ से कितने राक्षस तुम भेज रहे हो, वहाँ कौन मारता है? कृष्ण नामक जो लड़का है वही उसका आठवां पुत्र है और जो बलराम है वह भी उसी का पुत्र है, रोहिणी रहती है ब्रज में, उसी का पुत्र है बलराम। तो कृष्ण बलराम दोनों वसुदेव के पुत्र हैं और तुम्हारे साथ इतना धोखा किया है, अपने पुत्र को पहुंचाया है और बदले में लड़की दिखा रहा था और नंद की लड़की उठा कर लाया था। हम इतना सुनते हैं कंस तो तुरंत वसुदेव जी को हथकड़ी बेड़ी पहना करके उनके घर से बुलाया, पुलिस भेज करके बुलाया, बुला और सीधे पूछा नहीं, तलवार लेकर वसुदेव जी का मस्तक काटने जा रहा। जब तैयार था काटने के लिए कि हमारे साथ इतनी धूर्तता किया है, झूठ बोला है, धोखा दिया है और हमारी मृत्यु को सुरक्षित पहुंचा दिया है, कृष्ण के हाथ से हमारी मृत्यु है, जब मारने जा रहा था तो नारद जी ने रोक लिया। नारद जी ने कहा थोड़ा सोचो, बुद्धि से काम लो, वसुदेव जी के हाथ से तो वसुदेव के हाथ से तुम्हारी मृत्यु है कि इसके लड़के के हाथ से? तो कहा नहीं, इसके पुत्र के हाथ से मेरी मृत्यु है, तो इसको मार कर क्या करोगे, तुम्हारी मृत्यु तो रह ही जाएगी, तो इसका वध मत करो, छोड़ दो इसको, नहीं तो कृष्ण सुनेगा कि उसका बाप मारा गया तो वो ब्रज छोड़कर भी भाग जाएगा, फिर उसका पता तुमको नहीं लगेगा, भय हो जाएगा ना भाई, बाप मारा गया तो दोनों भाई भाग जाएंगे, तो तुम्हारी मृत्यु बनी की बनी रह जाएगी, उन्हीं के हाथ से तुम्हारी मृत्यु है। तो एक कार्य करो, कृष्ण बलराम को मथुरा बुला करके क्यों नहीं उनका वध कर देते, उनको मथुरा बुलाओ। तो कंस पूछा कि आखिर क्या बहाना करूं, कैसे बुलाऊं? तो नारद जी ने कहा कि यहाँ पर कोई यज्ञ करो, धनुष यज्ञ करो, कुछ करो शिवरात्रि के अवसर पर। तो उसके समझ में आ गए, अच्छा ठीक है। तो नारद जी ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु कृष्ण के हाथ से है, अतः कृष्ण को मारोगे तब न तुम्हारी मृत्यु टलेगी। तो वसुदेव जी को छुड़ा दिया नारद जी ने, उनका तो नाटक था, वो तो छुड़ा नहीं रहे, अच्छा ठीक। नारद जी कहकर चले गए। रात में अक्रूर जी को बुलाया अपने घर कंस, और बुलाकर कहा कि इस संसार में आपके समान मेरा हितैषी कोई दूसरा नहीं है। यहाँ तक उदाहरण दे रहा है, जैसे इंद्र विष्णु का, उपेंद्र का आश्रय लेकर के सारे जगत प्रशासन करते हैं, उस तरह से मैं आपका आश्रय लेकर के राज्य कर रहा हूं। हमें एक बात की बहुत बड़ी चिंता है कि कृष्ण के हाथ से, बलराम के हाथ से मेरी मृत्यु है। मैं चाहता हूं कि किसी तरह कृष्ण और बलराम का वध हो जाए। अक्रूर जी से बात कर रहा है, जो अक्रूर जी परम प्रेमी है कृष्ण के, चाचा लगते थे खास। तो जब कृष्ण को मैं मार दूंगा और उसके बाद वसुदेव को भी ही मारूंगा, नंद को भी मारूंगा, और जानते हैं इसके बाद मैं मरूंगा नहीं, मरूंगा नहीं, अजर अमर हो जाऊंगा, और जानते ही हैं कि जरासंध जी हमारे ससुर हैं, उनका तो मैं बहुत दुलरिया दामाद हूँ। तो ससुर हमारा जरासंध जैसा है, द्विज हमारा मित्र है, और आप जैसा हमारा मंत्री है, बुद्धिमान। विष्णु से उपमा दिया अक्रूर जी, और अपनी उपमा इंद्र से दी। जब इंद्र का बैरी था, इंद्रारी था, तो जब इस प्रकार से मेरा शत्रु मार दिया जाएगा तो यह पृथ्वी नष्ट कंटक हो जाएगी, और मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं खूब सुख भोगूंगा, राज्य विस्तार करूंगा, कभी नहीं मरूंगा। लेकिन मित्र, इस विषय में आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, तो क्या करना है? अक्रूर जी ने पूछा। कंस ने कहा, आप ऐसा काम कीजिए, मेरा ये रथ लेकर के आप जाइए नंद के गांव में, ब्रज में, और दोनों भाइयों को मथुरा में फेस्टिवल का, उत्सव का बहाना बना करके और लाइए। अक्रूर जी ने कहा कि वे हो सकता है नया में। कंस कहता, अरे इस रथ पर चढ़ने के लिए भी वो मचल कर आ जाएंगे, कभी देखे नहीं है गांव के गरीब लोग, ऐसा रथ सोने का जाएगा तो इस पर चढ़ने के लिए भी लोग आ जाएंगे। अब नंद से कहिएगा और सब लोगों को बुलाइए, नंद को भी, सब ब्रजवासियों को, यहाँ उत्सव है। तो यहाँ से हम लीला प्रारंभ कर रहे हैं। अक्रूर जी उस रात मथुरा में रुके। श्री शुक उवाच, अक्रूरो पिचताम रात्रि मधुपुर्या महामति उषित्वा रथमास्थाय प्रयजो नंद गोकुलम। श्रील सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, हम लोग भागवत श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुन रहे हैं। वो कहते हैं महामति अक्रूर, महाबुद्धिमान अक्रूर जी, ताम रात्रि मधुपुर जा उषित्वा, उस रात मधुपुरी में रहे, मथुरा में ही रहे, और सवेरा होने पर बिल्कुल भोर का समय था, रथम आस्थाय रथ पर स्थित होकर प्रयव नंद गोकुलम, नंद गोकुलम प्रयव, नंद गोकुल की तरफ चले, रथ पर चले। कृष्ण बलराम को लाने के लिए जा रहे हैं, कौन से इनको भेजा कि जाकर कृष्ण बलराम को लाइए, तो यहाँ मैं उनको मरवा दूंगा, पहलवानों से चाहे हाथी से, और सबसे बच गए तो अपने हाथों से मार दूंगा। अपनी मृत्यु को रथ भेज कर बुला रहा है, देखिए बेवकूफी। और जब कृष्ण बलराम के हाथ से मृत्यु है तो दूर रहे, वही अच्छा है ना। जब मनुष्य को कि मृत्यु निकट आती है तो मृत्यु पहले उसके बुद्धि को ही पलट देता है, बुला रहा, जिनके हाथ से मृत्यु है उनके उनको निकट बुला रहा। तो अक्रूर जी भगवान के जन्म को जानते थे, जिस दिन जन्म हुआ, यहाँ तक कि वसुदेव जी पहुँचाए गोकुल में कृष्ण को, सब उनको मालूम था। 11 वर्ष बीत गया था जबकि ये मथुरा छोड़कर ब्रज में नहीं गए। जानते हैं कि भगवान अवतार लिए हैं, लेकिन कंस को कुछ छलने के लिए उसके साथ रह रहे थे। इतना निकट, आप सभी देखते हैं, यदि मथुरा से नंदगांव की भी दूरी देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 84 वर्ष में ब्रजमंडल था, लेकिन अक्रूर जी नहीं गए कृष्ण का दर्शन करने के लिए। अक्रूर जी महामति, क्योंकि वो सोचते थे कि यदि मैं जाऊंगा कृष्ण से भेंट करने तो मैं महामंत्री हूँ, यह कंस पता लगा लेगा कि कहाँ जा रहा है, बड़े लोगों का प्रोग्राम पहले पता चल जाता है। ऐसा नहीं था कि अक्रूर जी किसी दिन छिप करके जाए नंदालय में, भगवान का दर्शन करके आ जाए, इससे उनको बड़ा भय होता था कि जाऊंगा तो ये भेद खुलेगा, कम से कम ये तो सोचेगा आखिर उस लड़के को देखने क्यों गया था, वही तो विष्णु नहीं है। और वसुदेव के यहाँ जन्म न लेकर नंद के यहाँ जन्म लिया, कृष्ण को कंस को आशंका हो सकती, इसीलिए आंखें तड़प रही थी, मन तड़प रहा था देखने के लिए, फिर भी अक्रूर जी ब्रज में नहीं गए। लेकिन भगवान की कृपा से वह दिन आ गया जबकि कंस स्वयं ही इनसे विनती करके भेजने लगा ब्रज में। तो अक्रूर जी के जीवन का सबसे सुमंगल दिन था, उनको बहुत खुशी हुई। लेकिन चूंकि बात रात में हो रही थी इसीलिए उस रात में रुक गए। रात्रि में प्रस्थान करना उचित नहीं था, भोर में प्रस्थान। महामति क्यों कहते हैं अक्रूर जी को? अक्रूर जी वसुदेव जी के सबसे बड़े हितैषी थे। और तो बात छोड़ दीजिए, कृष्ण के वे रक्षक थे, कृष्ण को बचा रहे थे स्नेह बस। भगवान उनके मति में बसे हुए थे। और ऐसा नहीं था कि कंस की नौकरी कर रहे थे तो बच्चों को जिलाना था, पत्नी को पालना था, क्या करेंगे, इस फेर में नहीं थे। कंस के अनुकूल बोल करके भी वसुदेव जी का, रोहिणी का, देवकी का, कृष्ण बलराम का भी हित करना चाहते थे, इसलिए वे चले रहते थे मथुरा में। अक्रूर जी ने कंस से यह कहा कि महाराज, मनुष्य तो बहुत मनोरथ करता है, लेकिन उसके मनोरथ की पूर्ति होगी कि नहीं यह तो ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। अब जो कुछ भी कह रहे हैं कि कृष्ण बलराम को मारूंगा, निष्कंटक भूमंडल का राज्य करूंगा, यह करूंगा, वह करूंगा, तो ठीक है, आप मनोरथ कर रहे हैं उचित है, लेकिन आपके मनोरथ की सिद्धि होगी कि नहीं यह कहा नहीं जा सकता। अक्रूर जी ने कह दिया सर, क्योंकि अक्रूर जी को विश्वास था कृष्ण बलराम जिस दिन यहाँ आएंगे उसके दो तीन दिन के अंदर ही मारा जाएगा। तो अब इन पर दोष न रहे इसलिए उन्होंने कह दिया कि महाराज आप इतना मनोरथ कर रहे हैं, इच्छाएं कर रहे हैं, लेकिन इसकी पूर्ति होगी कि इसके विपरीत होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। कृष्ण बलराम को बुलाया मारने के लिए, लेकिन आज कृष्ण बलराम पहुंचे और कल कंस का बात हो गया, जी भागवत में कथा है। महामति थे, महा का अर्थ भगवान भी होता है, भगवान जिसके मति में हो उसको महामति कहते हैं। महान एक नाम है विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का, महान तो उसी को महा शब्द कहा जाता है। महामति, महा या महान श्री भगवान एवं मतौ जस्य, जिसके मति में भगवान हो उसको महामति कहा। हरिश्वरी जी कहते हैं कि ये अक्रूर दयालु, क्रूर नहीं, तो अक्रूर को ही कंस भेज रहा है ब्रज में। किसी क्रूर को भेजता तो कृष्ण बलराम भाग जाते या नहीं आते, शायद तो यही सोचकर अक्रूर जी को भेज रहा है, मैं दयालु व्यक्ति को भेज रहा हूँ, वो जरूर आ जाएंगे साथ में, सोचेंगे कि अक्रूर जी तो अक्रूर हैं। उस रात मथुरा में रुक करके सवेरे चले प्रजऊ प्रकर्षण जजऊ। प्रकर्ष का अर्थ है विविध मनोरथों के साथ अक्रूर जी ब्रज में गए। बहुत सुंदर वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी करते हैं, पथ में रथ चल रहा है, रथ के ऊपर अक्रूर जी हैं, लेकिन अक्रूर जी एक क्षण भी घोड़ों को हाँके नहीं, ड्राइव नहीं, उनको ध्यान ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। वो तो रथ पहुंचने के पहले ही ब्रज में मन से पहुंच गए, चिंतन कर रहे थे रथ पर। गच्छन पथि महाभागो, जब गच्छन पथि महाभागो भगवत अम्बुजे क्षणे भक्तिं पराम उपगत एवमेत चिंतयत्। जब रास्ते में चले जेव ही ब्रज के पथ पर, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गच्छन पथि महाभाग, महाभाग्यवान कृष्ण प्रेम से विभूषित श्री अक्रूर जी जेव ही ब्रज के पथ पर चले रथ पर चढ़कर, उसी समय भगवान के प्रति परम भक्ति उत्कृष्ट प्रेम तुरंत उदित हो गया। चलते पराम भक्ति उपगत, उपकार थे ठीक ठीक पूरा पूरा, और गतकार थे प्राप्त। यह वृंदावन का स्वभाव है वास्तव में, कोई मनोरथ के साथ यदि ब्रज में जाए ट्रेन पकड़ेगा उसी समय प्रेम छल छला जाएगा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
गच्छन पथि महाभागो भगवत अम्बुजे। किसमें परम भक्ति उत्पन्न हुई? भगवान कमल लोचन अम्बुजेक्ष, श्री कृष्ण का एक नाम है कमल नयन, ये कमल लोचन, उनकी आंखें बहुत सुंदर कमल के समान। तो आंखों के वर्णन के द्वारा भगवान के समस्त सौंदर्य का वर्णन श्री सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। तो यह अभी कहा जा सकता था कि जगदीश्वर में उनकी भक्ति हो गई, जगन्नाथ में भक्ति हो गई, ये नहीं कहा जा रहा। अम्बुजेक्षण भगवती, कमल नयन भगवान में उनकी परम भक्ति उत्पन्न हो गई, प्रेम उत्पन्न हो गया। तो तात्पर्य है कि अक्रूर जी जो भी मनोरथ कर रहे हैं रास्ते में जाते हुए, उनके मनोरथों में भगवान के सौंदर्य को देखने की सबसे बड़ी लालसा, सौंदर्य प्रधान। कितना सुंदर भगवान होंगे, अवतार लिए हैं, हाय हाय मेरा दुर्भाग्य है मैं लगभग 11 वर्षों से नहीं गया, ऐसे तो अनादि काल से ही मर रहा हूँ इस जगत में, माया जगत में, और भगवान इतना निकट आए हैं और मैं देखने नहीं गया। तो यही ललक थी, कैसे हैं, उनका मुख कैसा है, चरण कैसा है, हाथ कैसा है, कैसा श्रृंगार करते हैं, कैसा वस्त्र पहनते हैं। यद्यपि अक्रूर जी सुने थे भगवान के विषय में और भक्ति के कारण सारा सौंदर्य, सारी छवि इनके हृदय में उभर रही थी प्रकट जैसे। तो इसी कारण से श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवती अम्बुजेक्षणे कह रहे हैं। अम्बुज का अर्थ कमल, अम्बु का अर्थ जल और ज का अर्थ जन्म लेना, जो जल से जन्म ले उसको अम्बुज कहते हैं या जलज। ऐसे इक्षण, इक्षण का अर्थ नेत्र, भगवान की आंखें कमल के समान है। इसका अर्थ है कि सौंदर्य का एक देश में वर्णन करके सर्वांग सर्व देश का वर्णन हो गया, जैसा आगे आएगा यही भाषा है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि श्रील सुखदेव गोस्वामी केवल भगवान के आंखों का ही वर्णन कर रहे हैं। कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो वास्तव में उस व्यक्ति का मिलन किसी व्यक्ति से सबसे ज्यादा और सबसे पहले आंखों से ही होता है। आप किसी से मिलने जाइए, वो भी आंख बंद किया हो, आप भी बंद किए हो तो मिलन क्या होगा। अब शब्द वेद ही बाहर निकलेगा, वो कहेगा आपका वेलकम कर रहा हूँ, ये कहेगा आ रहा हूँ, हो सकता है ना मिल पावे, ऐसे आप बगल बगल में चले, आंख बंद करके मिले भी तो उसका मजा नहीं। तो अक्रूर जी के मनोरथों में यह हो रहा है कि भगवान अपने कमल जैसे सुंदर कृपामृत से सनी हुई दृष्टि से हमको देखेंगे और मैं उनको देखूंगा, भगवान मुझे निहारेंगे, ऐसे इनके मनोरथों में आया है। आगे चलकर वर्णन होगा, कुछ देर हो जाए तो कोई बात नहीं है ना, क्योंकि लग रहा है कि देर होगी श्री अक्रूर जी भगवान के नेत्रों पर सबसे अधिक ध्यान कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ उनके कर, चरण, मस्तक, कटी प्रदेश, विशाल वक्षस्थल सबका स्मरण हो रहा है, और भक्ति इसके साथ ही साथ श्री कृष्ण की लीलाओं का भी स्मरण हो रहा है। तो सबसे अधिक सौंदर्य का स्मरण हो रहा है, इसीलिए कमल कमल नयन कहा गया। भगवती अम्बुजे क्षणे पराम भक्ति उपगत, पराम भक्ति, पराम का अर्थ अलौकिक दिव्य प्रेम कृष्ण में उमड़ गया, वो तो था ही हृदय में। अक्रूर जी भगवान के परिकर, भगवान की इच्छा से अब तक वो प्रेम दबा हुआ था, लेकिन आज भगवान के पथ पर चलते हैं, ब्रज के पथ पर चलते हैं, प्रेम उमड़ गया। अब मथुरा के विषय में एक क्षण नहीं सोच रहे थे, परिवार के विषय में नहीं सोच रहे थे, केवल श्री कृष्ण और बलराम के विषय में चिंतन कर रहे थे, याद कर रहे थे। गच्छन् पथि महाभागो भगवत अम्बुजे क्षणे भक्तिं पराम उपगत एवमे तद चिंतयत्, इस प्रकार से सोच रहे थे। लगता है श्रील सुखदेव गोस्वामी रथ पर बैठे हुए अक्रूर जी का वीडियो उतार रहे हैं तो वीडियो तो केवल शरीर का फोटो ले सकता है, लेकिन मन में व्यक्ति क्या सोच रहा है ये जानने तो कठिन है, पर श्रील सुखदेव गोस्वामी उनके भीतर मन में क्या हो रहा है इसका वर्णन कर रहे हैं। ये सर्वदर्शी ऋषि हैं सुखदेव गोस्वामी, भगवान की तरह सर्वज्ञ, भगवान जैसे किसी के हृदय में हैं, सब कुछ जानते हैं, तो भगवान की कृपा से उनके बड़े बड़े भक्त भी जीवों के हृदय की बात जान जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते एवं एतद अचिंतयत, इस प्रकार से यह सोचने लगे, घोड़े बढ़ रहे हैं वो भी बड़े आनंद में थे, मथुरा में रहे थे बेचारे, कंस को अब तक ढोए थे, आज अक्रूर जी को ढो रहे थे, और भगवान को उधर से लेकर के आएंगे, उनका बहुत बड़ा भाग्य है। घोड़े जा रहे हैं अपनी गति से, अक्रूर जी मनोरथ कर रहे हैं। तो हम लोगों को अपने भक्ति के नेत्रों से अक्रूर जी का दर्शन करना चाहिए। भगवान के प्रेम से नक्षिक भरा हुआ व्यक्ति भगवान को जा रहा है लाने के लिए, और इधर कंस भेजा है कि बुला ला, उनको मारना है और बुलाएंगे अक्रूर जी निश्चित, उनको विश्वास है कि भगवान मारेंगे कंस को, तो मारना और मर जाना है तो बात अलग है, अक्रूर जी ये सब नहीं सोच रहे हैं, पहले तो भगवान के बारे में सोच रहे हैं। सबसे पहले वे अपने विषय में सोचते हैं, किम मया चरितम भद्रम किम तत्तम परमम तपः कि वाथाप्यर्हते दत्तम जद्रक्षा मध्य केशवम। सोच रहे हैं कि अरे मैंने कौन सा अच्छा आचरण किया है, मैं अपने पिछले जन्मों में या इस जन्म में कौन ऐसा अच्छा कर्म किया हूं कि आज मैं कृष्ण को देखूंगा, किस कर्म का एक फल है, उन्हें अपने पर ही आश्चर्य हो रहा था। मन में सोच रहे हैं मैंने क्या अच्छा कर्म किया है, सुकृत किया है, मैंने कौन सी बड़ी तपस्या की है, और मैंने किसी सत्पात्र को, योग्य पात्र को कौन सा दान दिया है जिसके परिणाम से आज मैं केशव को देखूंगा, आज भगवान को अपने आंखों से देखूंगा। वास्तव में बहुत बड़े पुण्य, बहुत बड़ी तपस्या और बहुत बड़े दान का फल होता है कि भगवान में मति लगती है। तो मति लगने की यहाँ बात नहीं कही जा रही, जब द्रक्षा मध्य केशव, आज मैं केशव को देखूंगा, जिनको देखने के लिए मुनि जन कोटि कोटि जन्म तपस्या करते हैं, आज मैं उनको देखूंगा, मैंने कौन सा तप किया है, कौन दान दिया है और क्या सुकृत किया, तीन बातें वे अपने विषय में सोच रहे हैं। सामान्य रूप से स्वर्ग आदि की प्राप्ति भी बिना दान बिना तपस्या शुभ कर्म के नहीं होती, तो भगवान का दर्शन उनसे भेंट होना यह बिना सुकृत के कैसे संभव। नमाम दुष्कृतिनो मुद्धा प्रपद्यन्ते नराधमा, दुष्कृति व्यक्ति तो भगवान की शरण भी नहीं लेता है, दर्शन की बात तो बहुत दूर है। तो मैंने क्या सुकृत किया, इन सब श्लोकों से हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि जीवन में जहाँ तक हो सके सुकृत करना चाहिए। सुख अर्थ सुष्ठ और कृतक अर्थ कर्म, सबसे सुंदर कर्म इस जगत में है भगवान का नाम लेना है, सबसे अच्छा कर्म यह सुकृत शब्द से तात्पर्य है भक्ति। वो सोचे कि मैंने तो कोई भक्ति नहीं किया है, मथुरा में रह करके मैं राजनीतिक दंगल में हूँ, जिसका मुख नहीं देखना चाहिए उस कंस की चापलूसी में जीवन बीत गया, कंस की सेवा कर रहा हूँ, फिर भी कौन पुण्य किया था, क्या किया था कि आज केशव को देखूं मैं, वे सोच रहे। उनको सोचने के बाद भी अपने में समाधान नहीं मिल रहा है कि मैंने कुछ अच्छा कर्म किया। वास्तव में महान पुरुषों का स्वभाव होता है, उनको अपने द्वारा किया हुआ अच्छा कर्म याद ही नहीं आता, और कभी कोई भूल चूक हो गई हो, बुरा कर्म हो गया हो, तो उसकी याद करके वे ग्लानी से गलते रहते, मेरे द्वारा ये हो गया ये। और अच्छा कर्म किया, किसी को कुछ दिया, शुभ कर्म किया, उसकी याद उनको नहीं आती। और क्रूर जी सुकृत क्या करेंगे, वो मूर्तिमान सुकृत, भगवान का चाचा बनने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, भगवान के प्रति प्रेम भरा हुआ है, उनके लिए सुकृत आदि की अपेक्षा नहीं है। लेकिन सामान्य जीव की अभिमति करके अक्रूर जी अपने में सोच रहे हैं, मैंने क्या सुकृत किया है, क्या तपस्या उठाया। तपस्या करने से ही व्यक्ति को उच्चतर स्थिति प्राप्त होती है, भोगों को भोगने से नहीं। तो इस संसार में आदमी सोचता है खूब भोग भोग, भोगों में एक नींद भी है, खूब सो लो, लगता है कि और जोनियों में सोने को मिला ही नहीं, जाग जाग करके ही बिताया है और मनुष्य शरीर में जितना सो कम सोना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, कम खाना चाहिए और संसार की बातें बहुत कम बोलनी चाहिए, वाणी का तप। तपस्या बहुत जरूरी है, अपने अस्तित्व को शुद्ध करने के लिए, भगवान में मन लगाने के लिए तपस्या बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही साथ योग्य पात्र को दान, दान से तात्पर्य है किसी को कुछ देना, जैसे ज्ञान देना या धन देना, उपकार करना है, तात्पर्य यह है उपकार। यदि वास्तव में कोई जरूरत में व्यक्ति है तो इसको दे देने से व्यक्ति के कर्मों का नाश होता है, कर्म बंधन समाप्त होता है। यदि पता नहीं चलता है उस समय दान का क्या फल हुआ, लेकिन वो बिल बन जाता है, जैसे हम लोग फोन करते हैं तो उस समय पता नहीं चलता है कि हमारा खर्च हो गया, लेकिन वो टेलीफोन का बिल आ जाता है। तो वैसे ही कोई व्यक्ति कुछ दिया है भगवान को, वैष्णव को, साधु गरीब, किसी जीव का हित किया, गायों का हित किया, वही पुण्य उसका लग जाता है, पता नहीं उसको व्यक्ति को, लेकिन भगवान नहीं भूल सकते। तो उसका इफेक्ट क्या होता है कि मति शुद्ध होती है, भगवान में बुद्धि लगती है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि जो दुष्कृति है उनकी मति मुझमें नहीं लगती। चतुर्विधा भजन्ते मम जन सुकृति अर्जुन, हे अर्जुन चार प्रकार के सुकृति जन मेरा भजन करते हैं। भगवान वहां सुकृति शब्द कर, जिसके कर्म बहुत अच्छे, दूसरों को सताने वाला, बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति भगवान में मन को अस्थिर नहीं रख सकता। तो अक्रूर जी ये विचार करें कि मैंने क्या शुभ कर्म किया है, लेकिन एक बार जब अपने तरफ देखते हैं तो कहते हैं नहीं नहीं, मैं चल दिया हूं लेकिन उत्तम श्लोक का दर्शन मुझे नहीं होगा। जब अपनी ओर देखते हैं तब ये बात का, ममैत दुर्लभम मन ने उत्तम श्लोक दर्शनम, मेरे लिए उत्तम श्लोक का दर्शन बहुत दुर्लभ है, मैं ऐसा मान रहा हूं। मम एतद उत्तम श्लोक दर्शनम दुर्लभम मन, दुर्लभ भगवान भेंट नहीं करेंगे हमसे, मिलेंगे नहीं कृष्ण हमको। तो कभी कभी ये सोच रहे हैं क्यों, विश्वात्मनो जथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मनः, वे कहते हैं क्योंकि मैं विश्वाविष्ट चित्त हूं, मैं राज्य में धन में पड़ा हुआ था, क्या जरूरत क्या आवश्यकता थी उस पापी की नौकरी मैं करूं, मुझे तो बहुत पहले ही उसके संग नहीं रहना चाहिए था, ये सोच रहे हैं। विषयात्मा, विषय का अर्थ होता है ये संसार के शब्द रूप रसगंध, और विषय का एक अर्थ होता है राज्य। विषय अन्न खैले दुष्ट है, अन्न खैले दुष्ट है मन, तो उस विषय का अर्थ होता है राजा अधिकारी, राजा का अर्थ में बहुत अपवित्र माना जाता है, कह कर वसूल करता है, किसी पर दंड लगाता है, कुछ करता है, तो राजा का अन्न खाने से भगवान का भजन नहीं होता। भगवान के भजन के साथ भोजन का बहुत संबंध है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भजन के साथ क्या भोजन का संबंध है, कुछ भी खाओ और राम राम करो, नहीं भोजन के साथ संबंध है। अकूर जी कह रहे हैं कि मैं विषयात्मा हूँ, विषय में संसार के भोगों में या धन में ही मेरा चित्त लगा रहा है, इसलिए निश्चित ही मुझे भगवान का दर्शन नहीं होगा, ये ऐसे सोचते हुए जा रहे हैं। उदाहरण देते हैं किस तरह से उत्तम श्लोक का दर्शन मेरे लिए दुर्लभ है, जैसे शूद्र जन्मनः ब्रह्म कीर्तनम, जो कोई व्यक्ति शूद्र में जन्म लिया है तो उसके लिए वेद का उच्चारण दुर्लभ, ब्रह्म कीर्तनम, ब्रह्म का अर्थ वेद और कीर्तनम उच्चारणम, शूद्र में जन्म लिया है तो उसके लिए जैसे निषेध है, वेद का उच्चारण नहीं कर सकता है क्योंकि करने ही नहीं आता है, बिगड़ता है। तो उसी तरह से मुझे भगवान का दर्शन होगा, भगवान मिलेंगे नहीं, ये तो सब हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से वो सोचते हुए जा रहे, मुझे दर्शन नहीं होगा। ऐसे घोड़े बढ़ते जा रहे थे और भी इनके मनोरथ में परिवर्तन होगा, भाव में परिवर्तन होगा, लेकिन विकृति सोचते हैं। वास्तव में यह सिद्धांत है, यदि कोई व्यक्ति अपने तरफ देखता है, कोई भक्त, तो उस समय वो निराश हो जाता है, भगवान की कृपा मुझ पर नहीं होगी। लेकिन जब भगवान के तरफ विचार करता है और उनके स्वभाव की याद करता है कि भगवान तो पापियों को भी अपनाए हैं, दीनहीन को ही ज्यादा अपनाए हैं, तब साहस हो जाता है, मन में प्रसन्नता होती। एक भक्त कहे है पद्यावली में है कि हे कृष्ण, जब मैं यह सुनता हूँ कि आप भक्त वत्सल हैं तो मेरा तो कलेजा कांप जाता है, क्यों? भगवान तो भक्त पर कृपा करते हैं और मैं भक्त हूँ नहीं। जो ही सुनता हूँ कि आप भक्त वत्सल हैं तो मेरा हृदय डर जाता है, हृदय कांपने लगता है कि अब तो हमारा उद्धार नहीं हो, क्योंकि मैं भक्त नहीं। लेकिन जब यह आपका नाम सुनता हूँ कि आप दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं, तब तो मेरा उत्साह बढ़ता, इस दफा में तो मेरा उद्धार हो ही जाए। इस धारा के अनुसार मैं तो दीन तो हूँ ही, इसमें तो कोई बनाना नहीं, जन्म मरण में फंसा हूँ, ऐसे भी रोग दुख का शिकार हूँ, तो दीन तो हूँ ही और भगवान दीन बंधु हैं तो मेरे बंधु हो ही जाए। ये भक्त का भाव देखिए। जब रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी जी मिले चैतन्य महाप्रभु से, तो ये कहते हैं कि अपने अयोग्य देखी मने पाऊं क्षोभ, तथापि तुम्हार गुणे उपजाय लोग। हे प्रभु, जब हम लोग अपने तरफ देखते हैं तो मन में बहुत दुख होता है कि आपकी कृपा हमको नहीं मिलेगी। अपना जब हम आचरण देखते हैं, एक राजा के हारे लोग भी नौकरी कर रहे थे और वो भी वैदिक धर्म के विरुद्ध, एक मुस्लिम की नौकरी कर रहे थे, तो कहते हैं जब हम अपने तरफ देखते हैं तब तो मन में विकलता होते कि हमारा उद्धार तो कोटि कोटि जन्म में भी नहीं हो सकता है। लेकिन जब आपके गुणों पर विचार करते हैं तो मन में संतोष होता है, क्योंकि आपने जगाई मधाई का उद्धार किया, अपने अनेक पापियों का उद्धार किया और भी लीलाओं में अजामिल का उद्धार किए, मृगारी का उद्धार किया, बहुत किए। तो जब आपके गुणों की याद आती है तब मन में बड़ी आशा बनती है, उत्साह भर जाता है। लेकिन जब अपना स्मरण होता है तो उत्साह टूट जाता है। यही बात अक्रूर जी की, अपने तरफ विचार करते हैं कि मेरा अब तक जीवन कैसा रहा, क्या रहा, तो सोचते नहीं श्री कृष्ण हमको दर्शन नहीं देंगे, हमसे भेंट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं विषयात्मा। फिर भाव परिवर्तन होता है, तो वे कहते हैं मैवम मैवम ममाधमस्यापि स्यादेवा चित्तदर्शनम ह्रियमाणः कालनद्या कश्चित् तर कश्चन तरती क्वचित, कुछ ऐसे है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर मन में परिवर्तन हुआ, मुझे अच्युत का दर्शन होगा ही, मैं ममाधमस्यापि स्यादेवाश्युत दर्शन। जैसा पहले सोच रहे थे कि मुझे उत्तम श्लोक का दर्शन नहीं होगा, तो उत्तम श्लोक शब्द पर विचार कर रहे थे कि भगवान तो उत्तमों के द्वारा श्लोक कहते गीयते, उत्तम लोग उनका गान करते हैं, तो जो उत्तम श्लोक है वे उत्तम लोगों को ही मिलेंगे। लेकिन जब अच्युत हैं, दिन बंधु उनका स्वभाव नहीं मिटता है, दिनों पर स्नेह करते हैं, पापियों को तारते हैं, तो जब अच्युत स्वभाव याद आया तो कहते मैं वम, ऐसा नहीं है, मुझे दर्शन होगा ही। कैसे दर्शन होगा? तो कहते हैं क्योंकि कृष्ण अच्युत है, अपने स्वभाव से नहीं गिरते हैं। तो मम अधमस्य अपि मैं मानता हूं कि मैं अधम हूं, मैं नीच हूं, फिर भी श्री कृष्ण का दर्शन मुझे होगा। किस कारण से? भगवान का ऐसा स्वभाव है, इसलिए हमारे गुणों से नहीं मुझे दर्शन होगा। तो एक नदी प्रवाह तृण नदी प्रवाह तृण न्याय से कहते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि किसी नदी में कुछ तृण बहते हैं, काष्ठ बहते हैं, पर बिना पार किए ही कभी कभी देखा जाता है कि कहीं कहीं तट पर लग जाते हैं। हरिय मार काल नद्या क्वचन तरति कश्चन। आप लोगों ने देखा होगा बरसात के दिन में कई नदियों में बहुत लकड़ियां बहती है। हमारे गांव में एक नदी है, बरसात में उसमें बहुत पानी आता है, तो पहले सालों भर का ईंधन लोग निकाल लेते थे नदियों से। जंगल की नदी है और बरसात में बहुत लकड़ी ढो करके लाती थी, वर्ष भर के लिए ईंधन का काम चलता था। अब नहीं आता है, अब तो लोग उधर ही काट लेते हैं वृक्ष। तो देखे कि लकड़ी बहते बहते अपने आप तट पर लग जाती है। कर्म के अनुसार काल के प्रवाह में हम लोग बह रहे हैं। ह्रिय मारा काल नद्या, काल नदी, समय को काल को नदी कहा जा रहा है, उसमें हम सब बह रहे हैं। बह रहे, कभी नीचे जा रहे हैं, कभी ऊपर आ रहे हैं, कभी सुख के दिन आ रहे हैं, कभी दुख के दिन आ रहे हैं, कभी ससुराल जाते हैं दुल्हा बन करके, तो कभी यही भक्ति वेदांत में हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं। ऐसा होता है ना, कभी हॉस्पिटल का मुंह देखना पड़ता है, कभी कोस, कभी कोस, कभी कैसे, कभी डूब रहे हैं, कभी उतरा रहे हैं। काल नदी है और कुछ लोग तो इसमें बह रहे हैं, बहने में ही मजा ले रहे हैं, है ना। वो ये नहीं जानते हैं कि हम काल प्रवाह में मर जाएंगे, ये बुढ़ापा आ रही है, रोग हैं, बंधुओं का बिछो हो जाएगा, वो तो सोचते ही नहीं है कि इसे पार होना चाहिए। तो पूरी खुश है, आनंद में, बहने दो हमको, छोड़ो बहने दो। काल नदी काल के प्रवाह में बह रहे हैं। हरे कृष्ण। तो कभी कभी देखा जाता है, चाहे किसी के तारने से या अपने आप नदी की धारा के अनुसार ही, कोई कोई लकड़ी कोई तृण तट पर लग जाता है। तो मैं भी बहुत काल से, अनादि काल से काल नदी में बह रहा था, लेकिन तट पर लग जाऊंगा। अरे कैसे लगेंगे? यह एक संतोष की बात है, काम चलाऊ विचार के वास्ते हम भी पार लग जाएंगे। जैसे कभी कभी किसी से कहिए कि भगवान का भजन कीजिए, जप कीजिए, तो कहता अच्छा समय आएगा हम भी करेंगे। वो अपनी कोई इच्छा नहीं होती कि आज ही चालू करें, अच्छा होगा, भगवान चाहेंगे तो होगा। अरे आप कब चाह रहे हैं? भगवान नहीं चाहे होते तो गीता में क्यों बोलते मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्ते, तो बोल ही रहे। ये भगवान की इच्छा पर डिपेंड नहीं है, हमारी इच्छा पर डिपेंड है कि हम कब करना चाहते हैं। अच्छा हम भी पार लग जाएंगे, लग जाएंगे समय। कैसे पार लगेंगे? अपने आप भगवान चाहेंगे पार लग जाएंगे। माला पकड़ना नहीं चाहते। हिंदी भाषा के एक बहुत बड़े कवि हो गए हैं, उनका नाम था बिहारी मिश्र, तो वो बिहारी चतुर्वेदी नाम, वो लिखे हैं कि पतवा री माला पकड़, हरिना मैं करिनाम, तरी संसार पयोधिको और न को उपाय। पतवा री माला पकड़, तुम बह रहे हो इस संसार सागर में या नदी में, पहले पतवार पकड़ो, पतवार पकड़ो। पतवार क्या है? पतवारी माला। ये माला पतवार। और नौका क्या है? भगवान का नाम। हरिना मैं करी नाम, भगवान के नाम को ही नौका बनाओ और पतवार पकड़ो, माला पकड़ो। तरी संसार पयोधिको, संसार पयोधि को, संसार महासागर को पार करो, और न कोई उपाय, और कोई दूसरा उपाय नहीं। हरे नाम हरेर नाम केवलम कलव नास्ते व नास्ते व नास्ते, कोई उपाय नहीं है वास्तव में। यही एक सबसे बलवान उपाय है। बह रहे हैं तो कम से कम 16 बार तो खेना चाहिए, कुछ तो निकट पहुंचे, धीरे धीरे पहुंचे तट पर लग जाएंगे। तरी संसार पयोधि, शास्त्रों में प्राय इस जन्म मरण रूपे या दुख को समुद्र से या नदी से उपमा दी गई है। तो यहाँ पर अक्रूर जी काल नदी कह रहे, श्री सूर दास जी ने भी बारंबार अपने विनय पत्रिका में काल नदी कहा है, क्योंकि काल नदी में बहते जा रहे, बह जाएंगे, छुटी जाई है गांव घर, छुटी जाई है टोला, एक दिन गांव छूट जाएगा, अपना मोहल्ला भी छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, घर की नारी छूट जाएगी, नारी की दूर बात है, देह में जो नाड़ी है वो भी बंद हो जाएगी एक कहते हैं कि एक दिन ऐसा होएगा, कोई काहू का ना ही, घर की नारी कौन कहे तन की नारी जाए। इस समय बार बार हमारी मिसेज कह करके जो आसक्ति बढ़ा रहे हैं, मिसेज छूट जाएंगे और मिस्टर जी भी छूट जाएगा। ये होना है, और अब तो जीवित अवस्था में ही लोग छोड़ करके भाग रहे हैं, डाइवोर्स ले रहे हैं, क्या क्या कहो तो और तेज धार बह गई काल नदी की। एक दिन बात कर रहा था, मैं कथा कर रहा था इंग्लिश में, इंग्लैंड में, तो एक व्यक्ति प्रश्न किया, मैं स्त्री पुरुष के संबंध का वर्णन कर रहा था, तो वो कहा कि तो क्या जीवन भर के लिए विवाह होता है तो वो तो आश्चर्य से प्रश्न किया और मैं ही आश्चर्य में पड़ गया तो विवाह क्या 2-4 महीने के लिए किया जाता है या 2-4 साल के लिए किया? वो आश्चर्य कर रहा था हमारे प्रवचन पर और मैं उसके प्रश्न पर आश्चर्य बाद में मुझे पता चला कि इधर लोगों का ये कंसेप्शन है कि विवाह ऐसे 2-4 वर्ष के लिए, ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो 3-4 महीने के लिए, 2 दिन के लिए भी किया जाता, ऐसे लोग वर्णन कर रहे। ये तो संसार का संबंध, जो कुछ भी हो, यदि मान लीजिए धर्म के अनुसार नीह भी जाए, लेकिन अंततः तो संग छूटेगा। कभी कभी देखा जाता है कि नदी की धारा में कुछ लकड़ी या तृण बहते हैं या बालू के कण, तो कुछ आपस में मिल जाते हैं और अपने आप धारा के कारण भी बिछुड़ भी जाते हैं, एक जगह होते रहते हैं, बिछुड़ते रहते हैं, एक जगह होते रहते हैं, बिछुड़ते रहते हैं। आज इस परिवार में जन्म लिया है, कल दूसरे परिवार में जन्म, मनुष्यों में ही नहीं, कीट पतंग में भी जन्म हो सकता है, देवता में जन्म हो सकता है, बदल जाते हैं। श्रीमद् भागवतों में स्थान स्थान पर ये सब वैराग्य की बातें दी गई हैं, हम लोगों को उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो अक्रूर जी काल नदी करेंगे, नदी में बहते तीर्ण जैसे कभी कभी पार लग जाते हैं, तो मैं भी पार लग जाऊंगा। तो यह प्रश्न पूछा है, कैसे आप जानते हैं कि अब आप पार होने वाले हैं, या भगवान का दर्शन आपको होगा? तो लक्षण बता रहा है, सवेरे चले थे उसी समय से शुभ शकुन होने लगे, उनके दाहिने अंग फड़कने लगे, सब जांघ भी, भुजा भी, आंख भी, और इससे सुंदर दिन क्या होगा जब उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। तो सारे अंग फड़क रहे थे और हरिण दाहिने निकल रहे थे, देख रहे थे, कई बार जिन ही चले उसी समय से ब्रज के पथ पर। तो ये सब लक्षण देख करके वे कह रहे हैं, ममाद्या मंगलम नष्टम फलवांश्चैव मे भवः, जन्मस्य भगवतो योगिधेयाङ्घ्रि पंकजम्। मेरे जीवन के सारे पाप नष्ट हो चुके लग रहा, मम अद्य अमंगलम नष्ट, आज मेरा सारा अमंगल, कृष्ण प्राप्ति में जो भी शुभ अशुभ कर्म है सब समाप्त हो गया, मथुरा के उस दलदल से निकल करके ब्रजमंडल में जा रहे हैं, मेरा अमंगल नष्ट हो चुका और मेरा भव मेरा जन्म फलवान हो गया, सफल हो गया। फलवान से चाहिए मेरे इस जीवन में हम लोग खा रहे हैं कमा रहे हैं, फल क्या है शरीर का? फल है महामंत्र का उच्चारण, कृष्ण का दर्शन, ये फल है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
क्यों फल फलवान हो गया मेरा देह है, मेरा जन्म? क्योंकि जन्म नमस्ते, आज मैं नमस्कार करूंगा। किसको नमस्कार करूंगा? जोगी भयान रिपम का जन्म, बड़े बड़े निष्कल कलमस योगी जन मन में जिन चरणों का ध्यान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, उन चरणों में आज मैं साक्षात प्रणाम करूंगा। बड़े बड़े भक्ति योगी या संत महात्मा भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, ध्यान में इतना अधिक सुख मिलता है कि मग्न रहते। तो योगी लोगों के द्वारा भगवान के जो चरण कमल ध्येय है, स्मरणीय है हृदय में, आज मैं साक्षात अपने मस्तक से उन चरणों का स्पर्श करके प्रणाम करूंगा। आज मेरा जीवन सफल हो गया और मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। मन जी अपने आप में ही प्रश्न उठ रहा है, कैसे आप विश्वास करते हैं कि आपका अमंगल नष्ट हो गया? तो उसमें एक विशेष लक्षण बता रहे हैं। कंस हो बता दिया कृत में त्यनुग्रह, सबसे पहला लक्षण तो ये बता रहे हैं, मेरा अमंगल नष्ट हो गया। इसका सबसे पहला प्रमाण ये है कि कंस जैसा महाखल अति खल आज मेरे प्रति अति करुणा कर दिया। तो कंस के मुख से यह शब्द निकले कि कृष्ण के पास जाओ, ये कैसे हो सकता था? कुछ मेरा अमंगल नष्ट हुआ है, मेरा कोई पुण्य उदित हुआ है, इसीलिए कंस के हृदय में ऐसी शुभ बात आई। तो कृष्ण को मारने के लिए देवकी वसुदेव को कारागृह में बंद किया था ना, लेकिन आज भेज रहा भले उसकी नियत कुछ भी हो, लेकिन अब कुंवर जी को छुट्टी मिली जाने के लिए ब्रज में भगवान को देखने के लिए, यह बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहला सुलक्षण यही देख रहे हैं कि हमारे जीवन के सारे पाप नष्ट हो गए, नहीं तो कंस जैसा राक्षस कैसे मुझे इतना सुंदर रथ देता और सलाह देता कि आप जाइए कृष्ण को लाइए। और यह भी सिखाया था आप ऐसे व्यवहार करना कि आपके दूषित अभिप्राय को दोनों बच्चे या नंद आदि कोई न समझ पाए। मैं उनको सिखा रहा था भक्ति पूर्वक जाना, ऐसा कहा था ट्रिक से, भक्ति सिखा रहा। एक भक्त को कंस भक्ति सिखा रहा था। हमारे यहाँ एक कहावत है, नानी आगे ननियौरा के बखान। एक छोटा सा बच्चा था तो उसकी नानी से भेंट हो गई, तो नानी के गांव की सारी बातें लगा करने ऐसे रहा ये रहा और कुछ नहीं जानता था, दो चार महीना रहा था। तो नानी के आगे ननियौरा मतलब नानी जहां रहती है वहां की कथा कोई नहीं, अभी भक्ति सिखा रहा है कंस, जाना तो ऐसे मिलना ऐसे मिलना, उनको पता ना लगे कि तुम्हारे हृदय में ऐसी दुर्भिसंधि है, खड़यंत्र है। कोई ये ना जाने कि कंस रथ भेजा है इस नियत से, वैसे नहीं जाने कि कंस बहुत प्रेम करता है, राजा है, इसलिए प्रजा को निमंत्रण दिया है। लोग देखे गांव के लड़के हैं, कभी सिटी नहीं देखे हैं, तो रथ देख करके चढ़ जाएंगे। लड़के तो बैलगाड़ी पर झूल जाते हैं, उनको मर्सरी कार दी जाए तो क्यों नहीं चढ़कर चल रहे। तो बैलगाड़ी पर अब तक कृष्ण बलराम चढ़े हैं, तो ये रथ देखेंगे तो चढ़ने के लिए मचल जाएंगे, वो भागेंगे। तो ये अमंगल नष्ट हुआ है। कुछ लक्षण होता है वास्तव में, किसी के पापों का परिसमापन होता है या उसके पुण्य उदित होते हैं, तो कुछ लक्षण दिखता है। सबसे पहला लक्षण था कंसो बता दिया कृत में त्यनुग्रह। ये नहीं कह रहे कि भगवान मुझ पर कृपा किए, वो कह रहे कंस ने मुझ पर अति अनुग्रह किया। द्रक्षे नृपद्मम प्रहितो मुना हरे, क्योंकि अमुना प्रहित इसी के द्वारा भेजा हुआ मैं आज कृष्ण का दर्शन कर रहा हूं, तो मैं पापी कहां जा रहा था, पाप मेरा जाने नहीं दे रहा था, लेकिन जब मेरा पाप उधर से खत्म हुआ स्टॉक सारा, तो कंस के मन में ये विचार उदित हुआ, ममाद्या मंगलम नष्टम फलवान सेवन, मेरा इधर पाप नष्ट हुआ और कंस के मन में शुभ विचार आया। ये शुभ विचार क्या आया है उसका केवल कृष्ण के पास भेज रहा है, इसी पर अकुर जी ये बात कह रहे हैं। अहो बताद्या कृतमे, कंसो बताद्या कृतमेत्य अनुग्रह, बतक अर्थ अहो, कितनी आनंद की बात है, कितनी आश्चर्य की बात है कि आज कंस मुझ पर अति अनुग्रह किए, जो अति खल है वो अति अनुग्रह किए, जिसे कोई आशा नहीं की जा सकती है कि यह कृपा करेगा, और कृपा किया आज रथ दिया प्रेम से भेज रहा है, कृपा है वास्तव। कोई किसी को रिजर्वेशन करा करके ट्रेन से कहे कि जाओ वृंदावन घूम आओ, हमको तो फुर्सत नहीं है, जाओ भगवान के धाम में दर्शन कर आओ, तो वास्तव में बहुत बड़ी कृपा है। भी स्वयं नहीं जा सके किसी कारण से तो दूसरों को भेजना चाहिए, तो वो जो पुण्य कमाएगा उसमें शेयर मिलता है, और वो इतना ज्यादा पुण्य होता है कि शेयर भी काफी हो जाता है उसका थोड़ा अंश भी काफी हो जाता है, वह व्यक्ति वास्तव में उपकारी है जो कहे जाने के लिए वृंदावन भगवान के धाम में या भेजे सुविधा दे। कंस के उपकार को अक्रूर जी आज मान रहे हैं कि इसी के द्वारा मैं भगवान के चरण कमल को देखूंगा, कैसा चरण कमल, अब भगवान का स्मरण कर, कृतावतारस्य तमः दुरत्ययम् पूर्वे तरंजन नख मंडल त्रिशा, भगवान के दसों चरण नख का ध्यान कर रहे हैं, जन नख मंडल त्रिशा, जिनके नख श्रेणी की ज्योत्सना से पूरा पहले बड़े बड़े लोग दुरत्य तम को पार कर गए, दुरत्य ज्ञान को पार कर गए, संसार को पार कर गए, हृदय में यदि भगवान के नख का ध्यान आ जाए चरणों का, तो अज्ञान नहीं रह सकता है, अर्थात भगवान में मति लग जाती, इतना सुंदर नख है भगवान का, नेल्स बहुत सुंदर नख, और लोग अपने नखों पर पॉलिश करते हैं तब जाकर के कुछ अच्छा लगता है, लेकिन भगवान के नख जानते हैं कैसे है, चंद्रमा से भी अधिक ज्योत्सना निकलती है सांवले चरण में, नीचे तो लाल लाल रहते हैं ऊपर से सांव, और वहां नख जो है हीरा की तरह मोती की तरह चमकते हैं, चमचम यानी चंद्रमा की तरह चमकते हैं, इसलिए नखचंद्र कहा जाता है। तो इस तरह से हाथों में भी 10 नखचंद्र हैं और पैर में 10 नखचंद्र, नखमंडल अक्रूर जी कहे, नखमंडल त्विशा, ट्वीट ट्वीट करते कांति, बड़े बड़े लोग जो अज्ञान को तर गए, तो श्रीपद श्रीधर स्वामी जी अर्थ करते हैं जैसे अम्बरीश महाराज पहले, जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं वास्तव में भगवान के नख के प्रेमी थे, चरण के प्रेमी, अर्थात भगवान के समग्र श्री विग्रह के प्रेमी, भगवान के नख ज्योति का ध्यान करके और दुरत्य तमन को पार कर गए थे, आज मैं उसी चरण को देखूंगा। तो शरीर रथ पर बैठा है लेकिन मन भगवान के चरण कमल के पास पहुंच गया है, नख मंडल तेजा, दसे नख का ध्यान कर रहे हैं, देख रहे, ऐसी छवि अक्रूर जी के मन में मथुरा में नहीं हुई थी, मथुरा में तो कई कार्यों में व्यस्त थे, फुर्सत निकाल कर भगवान की लीला पढ़नी चाहिए, भजन करना चाहिए, हम सोचें कि सब काम भी होता रहे और ये भी हो तो ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लेकिन कभी कभी छोड़ करके जो भजन होता है उसमें ज्यादा रस है, सदा के लिए नहीं छोड़ता है तो 7 दिन 10 दिन महीना कुछ छोड़ करके जैसे ब्रज में रमते हैं, रम रहे भगवान के धाम में, ब्रजमंडल परिक्रमा में रमते हैं, या अकेले गए, 10 आदमी के साथ गए, जैसे नखमंडल बहुत शब्द आकर्षित कर रहा है। पूर्वे, पूर्वे काल के पुरातन पूर्व काल में जितने भी लोग संसार को पार किए हैं, वे भगवान के भक्त होकर पार किए, और भगवान के चरण कमल के अंगुलियों का नाचते हुए चरण का नख का ध्यान किया। कृतावतारस्य, जब भगवान इस जगत में अवतार लेते हैं तो यहां पर नखों का स्पर्श धरती से होता है, और सबसे पहले जो भक्त होते हैं वे चालू करते हैं भगवान का स्मरण चरण से। तो भगवान की प्रेयसियां श्री राधा आदि हैं, वे लोग भगवान के मुख से ही चालू करते हैं, तो मुख पर देखते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं भगवान की शरण लेते हैं तो नख से ही चालू करते हैं। सो नख सिख कहा, नख से सिख तक, सिख से नख तक। यह एक बहुत बड़ा सुख है, बहुत बड़ी सफलता है, वास्तव में ज्ञान है कि भगवान के चरण हमारे मन मंदिर में उदित हो, मन में ध्यान आ। जदर्चितं ब्रह्म भवादिभिः सुरैः श्रिया च देव्या मुनिभिः च सात्वतैः जद्वा विहारे ब्रज गोपिकानां मुनिभिः च सात्वतैः। ठाकुर जी ये याद कर रहे हैं कि जिन चरण कमल की पूजा, जिन चरण कमलों की पूजा ब्रह्मा और शिव आदि देवता करते हैं, जदर्चितं ब्रह्म भवाद भी सुरई श्रिया च दिव्या, श्री जी अर्चना करती हैं, भगवान के चरणों को दबाती रहती हैं, भगवान के चरणों में चंदन अर्पित करती हैं, फूल अर्पित करती हैं, सहलाती हैं और सब प्रकार से सेवा करती रहती हैं। चरण सबसे तत्पर पूरा शरीर भी लेना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से अक्रू जी को चरण का ध्यान पहले हो रहा है। तो ब्रह्मा जी और शिव जी भगवान के चरणों की पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी तो डायरेक्ट पूजा करते हुए देखे ही जाते हैं, और भगवान शिव भी चरणों से निकली हुई गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, बहुत आदर की। अर्थात कहने का आशय, जिन चरणों से गंगा जी निकली हैं और जिन चरणों की पूजा ब्रह्मा जी करते हैं और जिन चरणों की पूजा लक्ष्मी जी करते हैं, सेवा करते हैं, मुनि भी सशात होते हैं, और मुनि लोग भी जिन चरणों की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनको आज मैं देखूंगा। जब गोपिका नाम कुचकुम कुमांकितम, हाँ उसके पहले भूल रहे हैं, गोचारणायान चरैश चरद बने जब गोपिका नाम कुचकुम कुमांकितम। देखिए वृंदावन के पथ पर अक्रूर जी हैं और भगवान की अत्यंत गुह्य लीलाएं भी इनके मन में उदित होने लगे, चरणों के विविध गुणों का वर्णन कर रहे हैं। पहला गुण सुनिए, पहला गुण ऐश्वर्य का है। इस जगत के ईश्वर ब्रह्मा जी और भगवान शिव आदि देवता पूजा करते हैं, जैसे सिद्ध हुआ कि भगवान सबसे बड़े ईश्वर, ईश्वर है परम पुरुष, इसके द्वारा ऐश्वर्य कहा गया। और श्री जी चरणों की आराधना करती हैं, जो सर्व सौभाग्य की निधि है, वे लक्ष्मी जी पूजा करती हैं, प्रेम करती हैं चरणों से, तो इसके द्वारा भगवान के चरण सर्व सौभाग्यवान हैं, सौभाग्य देने वाले हैं, यह सिद्ध हुआ। सौभाग्य, सफलता, सुख भगवान के चरण देते हैं, लक्ष्मी जी इसमें प्रमाण। और मुनि लोग भगवान के चरणों की आराधना करते हैं, इसे यह सिद्ध हुआ कि भगवान का चरण कमल ही जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ। मुनि लोग और सहारा रिजेक्ट कर देते हैं इस लोक के भोगों को, की तो बात ही क्या, स्वर्ग पर भी दृष्टि नहीं डालते, मुक्ति भी नहीं चाहते हैं, लेकिन भगवान के चरण कमलों का वरण करते हैं। तो इसके द्वारा यह सिद्ध हुआ कि भगवान के चरण कमल ही सर्व पुरुषार्थ शिरोमणि है। मुनि भी सशात्व, और गोचारणाय अनुचरैश चरद बने, गोचारण के लिए वे चरण चलते हैं वन में भगवान के चरण कमल, गौओं को चराने के लिए ब्रज से निकलकर वन वन में भ्रमण करते हैं। किनके साथ? अनुचरई, अपने अनुगामी सखाओं के साथ। तो इसके द्वारा भगवान के चरणों की कृपालुता का बोध हो रहा है। भगवान के चरण चलते हैं पीछे पीछे पशुओं के, किस लिए? अपने सुख के लिए नहीं, गौओं का पेट भरने के लिए, गौओं को चराने के लिए। गाय चराने में बहुत मेहनत पड़ती है, हम लोग देखे हैं इसको, उनको घेरना, घाम में दौड़ना, धुपना। लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं, उनके चरण कमल इतने कृपालु हैं कि गौएं घास चर करके उसको खूंटी कर देती थी, उसी पर चलते थे, पत्थर पर चलते थे गौओं को चराने। तो भगवान के चरण कमल अत्यंत करुणावान, कृपालु, यह सिद्ध। और जब गोपिका नाम कुचकुम को मान के पा, ये गुज लीला याद आ रही कि जो चरण गोपियों के स्तनों पर लगाए हुए केसर और कुमकुम के लेप से युक्त, ऐसे चरणों में अहम नमस्ते, मैं प्रणाम करूंगा। ध्यान आ रहा है भगवान के चरणों में लाल लाल तलवों में गोपियों के वक्षस्थल का केसर लगा। गोपियों के जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यक काम यही होता है उनके दृष्टि में। जब श्री कृष्ण वन में जाते हैं तो श्री राधा आदि गोपियां वन में ही आ जाती हैं, अपना घर छोड़कर सूर्य पूजा के बहाने, फूल चुनने के बहाने या पानी भरने के बहाने वे वन में आ जाते हैं, क्योंकि वे घर में बैठे बैठे चिंतन करते हैं कृष्ण के चरण में कठोर घास लग रहे हैं, तृण लग रहे हैं, पत्थर लग रहे हैं, कांटे लग रहे हैं, तो उनका हृदय बिल्कुल पीड़ित हो जाता है। यदि सोचते हैं कैसे प्रियतम के चरण को सुख देंगी, कैसे सुख देंगी, तो वे वन में आ जाती हैं। और श्री कृष्ण भी कोई न कोई बहाना बनाकर उनसे मिलते हैं, तो उस समय श्री कृष्ण को किसी ऊंचे आसन पर बैठा कर गोपियां सबसे पहले यही कार्य करती हैं, वो भगवान के चरणों को लेकर के अपने वक्षस्थल पर रख करके उसे सांत्वना देती, चरण कठोर पत्थर पर घास पर चल करके चरण दुखी होंगे तो अपने वक्षस्थल पर रखती हैं, विशेष करके श्री राधा रानी। तो उस समय उनके स्तनों पर लगा हुआ केसर का जो पंख होता है, लेप होता है, वो भगवान के चरणों में लग जाता है। प्रकृति जी इसका ध्यान करो, जद गोपिका नाम कुचकुम कुमाम के तुम, जो चरण कमल गोपियों के वक्षस्थल के केसर से युक्त रहता है, अंकित रहता है, उन चरणों में मैं प्रणाम करूंगा। तो इस प्रकार भगवान के रूप का ध्यान हो रहा है और लीला का ध्यान अपने आप। तो जब गोपिकानंद कुचकुम कुमार की, तो हम अक्रूर जी जब रथ पर बैठे बैठे ये बात सोच रहे हैं तो भगवान के चरण किस तरह से गोपियों के वक्षस्थल पर लग रहे और वे सहला रही हैं, इसका वे ध्यान कर रहे हैं, या गौओं के पीछे पीछे कैसे दोनों चरण कमल चलते हैं इसका ध्यान कर रहे हैं, मुनिजन किस तरह सारे जगत की उपेक्षा करके भगवान के चरण कमल को ही अपने जीवन का पुरुषार्थ मांगे इसका ध्यान कर रहे हैं, और श्री जी कैसे अपने कर कमल में भगवान के चरणों को लेकर के सहलाती सेवा करते हैं इसका स्मरण हो रहा है, और ब्रह्मा जी कैसे सेवा किए, इंद्र कैसे सेवा किए, या भगवान शिव कैसे सेवा किए, इसका सब स्मरण हो रहा है। भगवान के चरणों पर ही सब बड़े बड़े लोग टिके हुए, जगर्चितम ब्रह्म भवादि सुरई श्रियाच देव्या मुनि भी ससात्वत ही गोचारणायानुचरैश्चरद बने जद गोपिका नाम कुछ कुंकुमांकितम। ये भगवान के चरणों का ध्यान है। वास्तव में इन श्लोकों में बहुत रस है, ये कहीं श्लोक की व्याख्या घंटों की जा सकती, यही भक्तों का वास्तव में धन है, यही सुख है भगवान की लीलाओं का स्मरण करना। तो अक्रूर जी इस तरह से भगवान की लीलाओं का ध्यान कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं निश्चित मैं देखूंगा क्योंकि मृग मेरे दाहिने ओर निकल रहे हैं। द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोल नासिकम स्मितावलोकारुण कंजलोचनम मुखं मुकुंदस्य गुडाल कावृतम प्रदक्षिणं वै प्रचरन्ति मे मृगः। मैं निश्चित देखूंगा श्री कृष्ण का मुख, चरण से अकस्मात मुख पर चले जैसे लगा कि अब भगवान के मुख को देखे बिना इन्हें बेचैनी हो गई। पहले चरण कह रहे हैं जदर्चितम ब्रह्म भवाद भी सुरे द्रक्षे घृ पद्मम प्रहितो मुना हरे। कंस के द्वारा भेजा हुआ मैं कृष्ण का चरण कमल देखूंगा और फिर कह रहे हैं द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोल नासिकम। मूल अर्थ इस तरह चाहिए नूनम निश्चितम अहम मुकुंदस्य मुखम द्रक्ष्यामि, मैं मुकुंद का मुख देखूंगा। मुकुंद का अर्थ जो प्रेम और मुक्ति देते हैं, जो परम आनंद देते हैं, उनका नाम है मुकुंद। भगवान और वस्तु से नहीं, अपने मुख का दर्शन करा कर जिस समय मुस्कुरा देते हैं तो संसार की महानिधि महासुख परमानंद उसी समय प्राप्त हो जाता है, इसलिए उनको मुकुंद कहते हैं। द द शब्द का अर्थ दाता ददाती द, और मुकु मुकु का अर्थ प्रेम रस वचनम और भक्ति अथवा मुक्ति दुखों से छुटकारा, मुकुंद दे देते हैं। तो अक्रूर जी यहाँ पर भगवान को मुकुंद कह रहे हैं। मुकुंदस्य मुखम नूनम द्रक्ष्यामि निश्चितम द्रक्ष्यामि देखूंगा, मुकुंद का मुख निश्चित देखूंगा। क्यों कि प्रदक्षिणम वही प्रचलन्ति मैं मृगा, ये हरिण सब मेरे दाहिने ओर निकल रहे हैं, ये शुभ शकुन हो रहा है, मैं अवश्य ही भगवान के चरणों को देखूंगा। सुकपोल नासिकम, भगवान के चरणों का ध्यान कर मुख का ध्यान करते हुए कहते हैं सुकपोल नासिकम शोभन कपोल और शोभना नासिका जस्मिन तत्व मुखम, जिस मुख में बहुत ही सुंदर गाल है और बहुत ही सुंदर नाक है, मरकत मणि के समान चमचम चमकते हुए जिनके गाल हैं कपोल, ये ध्यान आ रहा है भगवान को देखूंगा। अनादि काल से इस जगत में हूं, मर रहा हूं, लेकिन आज कृष्ण को देखूंगा, भगवान को देखूंगा। जीवन की सफलता वास्तव में भगवान को देखने में है। धन्य है मैं आके जो भगवान का दर्शन करती हैं। तो भगवान को देखने की पूर्णता प्राप्त करने के लिए ही हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, भगवान को अर्चा विग्रह के रूप में देखते हैं। देखना चाहिए बहुत ध्यान से, देखते देखते एक दिन वास्तव में हम भगवान को बोलते हुए देखेंगे, चलते हुए सुनते सुने वे बात बोलेंगे, हम बोलेंगे, वे जवाब देंगे। अक्रूर जी के मनोरथ पर जरा विचार कीजिए, वे भगवान का किस तरह से स्मरण कर रहे हैं। तो मैं मुकुंद के मुख को देखूंगा, कथम भूतम मुखम सुकपोल नासिकम, जिसमें बहुत सुंदर कपोल है और बहुत सुंदर नासिका, बहुत सुंदर नाक। आचार्यगण वर्णन करते हैं कि तोते के नोक जैसी नुकीली भगवान की नाक है और मरकत मणि के समान चमचम चमकते हुए उनके गाल। इस तरह मुख में तो बहुत अंग होते हैं ना, सबसे पहले ऐसे वर्णन कर सुकपोल नासिका स्मितावलोकारुणकंज लोचनम स्मित अवलोक, भगवान की आंखों का ध्यान कर रहे हैं। तो ध्यान क्या कर रहे हैं, मन अपने आप भाग गया है वहां देख रहा है। स्मित अवलोक अरुण कंज लोचनम, श्री कृष्ण की आंखें नवीन कमल के समान खिली हैं, यह कोटि कोटि कमल से भी अधिक कमनीय है भगवान की आंख। संस्कृत व्याकरण का एक नियम है, जैसे मान लीजिए कमल लोचन या कमल नयन भगवान को कह दिया गया तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उनकी आंखें कमल के समान है। कमलादपि सुंदरे नेत्रे जस्य, कमल से भी जिनके सुंदर नेत्र हैं उनको कमल नयन कहते हैं। कई तरह से अर्थ किया जाता है, कमलवत नेत्रे जस्य स कमल नयन, जिसके कमल के पंखुड़ियों के समान भीतरी गर्भ के समान आंखें, लेकिन वैसे ही आंखें नहीं है भगवान की। गोपियां तो कहते हैं कि शरद काल के सरोवर में खिलने वाले कमल के भीतरी शोभा को आपके नेत्रों ने चुरा लिया, अब कमल में सौंदर्य रहा ही नहीं, क्या उपमा दे। ऐसे कल्पना करें कि जैसे लगता है कि पहले सौंदर्य रहा होगा कमल में, वो भी शरद काल में खिलने वाले कमल, लेकिन आपकी आंखों ने उसकी छवि को छीन लिया। सूरदास जी गाते हैं पद में, वे कहते हैं कि भगवान कृष्ण के नेत्रों ने कमल की शोभा को चुरा लिया, इसीलिए कमल अब झुका रहता है, कभी कभी खिलता है। और भगवान के मुख को देखकर चंद्रमा को हुक लग गई, तो इसीलिए वो कटा छटा रोगी दिखता है, एक ही दिन पूरा मुख दिखाता है पूर्णिमा के दिन, बाकी वो ऐसे होश उड़ गया उसका कि बाप रे कृष्ण के मुख के सामने तो मैं कुछ भी नहीं, तो मुख दुराए रहता है, ठीक से उगता नहीं। और कोयल भगवान की बोली को सुन करके इतना दुखित हो गए कि लोग हमको क्या कहेंगे, हमको धिक्कारेंगे, तुम्हारी बोली में कोई दम नहीं, इसीलिए वो नगर छोड़कर वन में भाग गए। कोयल प्राय वृक्ष पर रहते हैं, तो वो कृष्ण के कंठ स्वर से उब करके भाग। अब तो सब लोग कृष्ण की प्रशंसा करेंगे, हमारी कोई प्रशंसा करेगा नहीं। इस प्रकार के भगवान के अंग हैं विविध, स्मित और लोग भगवान जब देखते हैं अपने भक्तों पर या अपने प्रेमियों पर, तो स्मित और लोग, स्मित का अर्थ है मुस्कान, मंद मुस्कान, मुस्कान का अर्थ है कि ऐसी हंसी जिसमें दांत दिखाई ना पड़े, अगर दांत दिखाई पड़ता है तो उसको हास्य कहते हैं, और यदि जोर जोर से आवाज भी निकलने लगे हंसने में तो उसको तो और ऊंची हंसी कहे हास। तो श्रीकृष्ण मुस्कुराते हैं, और मुस्कुरा करके जब वो देखते हैं किसी को, उस समय वो प्रेमी निहाल हो जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ा सुख उसी से मिलता है, भगवान के प्रेम भरी मुस्कान भरी दृष्टि को देखकर। स्मितावलोका रुणकंज लोचनम और अरुणकंज लोचनम, रत्नारे नेत्र हैं भगवान के, थोड़ा थोड़ा लाल लालिमा लिए हुए, बहुत सुंदर। ऐसे नेत्रों से, ऐसे मुस्कान से, ऐसे चितवन से जो युक्त हैं, ऐसे मुख को मैं देखूंगा। और कथम भूतम मुखम, कैसा मुख, गुडाल कावृतम, गुडाका से आवृत मुख। गुडा का अर्थ होता है एक टेढ़ा घुंघराल, भगवान का भी नाम है गुडा केश, जिसके केश घुंघराले, तो भगवान कृष्ण का एक नाम है, और अर्जुन के भी बाल घुंघराले थे, इसलिए वो उनको गुडा केश कहते हैं। गुडा या गुडा का एक शब्द में ले लिया जाता है, और गुडाका का अर्थ अज्ञान होता है, निद्रा असावधानी माया, तो जो माया को जीत चुका है उसको गुडा केश कहते हैं, अर्जुन का एक नाम। भगवान का मुख कैसा है, गुडाका गुडा अलक आवर्तन, गुडाल का आवर्तन, गुडा जिसमें टेढ़े टेढ़े घुंघराली अलके हैं, ऐसे अलकों से झूलते हुए केशों से मुख आवृत है। आवृत का अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि भगवान के आगे ही सब केश लटके हुए हैं, अब इधर उधर लटके हुए, और कभी कभी वे आगे लटक जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कभी कभी तो देखा गया है, मतलब लीला में पढ़ते हैं कि वे अपने हाथों से अपने केश को नहीं हटा पाते, ऐसे झटकते रहते हैं, झटक कर ऐसे करते हैं, तो पीछे होते हैं। कभी कभी गोपियां कहती हैं कि ये बैरी ना अलके मुख की शोभा देखने नहीं देते, लटक जाते हैं, वो भी परम सुंदर है। ये तो ब्रज की शोभा का वर्णन आप सुन रहे हैं, युद्ध भूमि में भगवान के केश घोड़ों के टाप से उड़ी हुई धूलि से दूसरी और शरीर मुख पर पसीने के बूंदे, उस छवि को देखकर भीष्म पितामह लट्टू हो कहते हैं यही मुकुंद हमारी गति हो, जिनकी छवि ऐसे हो रही है कुरुक्षेत्र। तो भगवान के केश बहुत सुंदर, केशों से उनका मुख और अधिक सुंदर लगता है। भगवान का जहां भी वर्णन आता है कृष्ण का, तो वहां अलोकों का वर्णन जरूर आता है। और भगवान श्री कृष्ण का वर्णन जहां देखिए वहां मंद मुस्कुराते मुस्कुराते। भगवान नृसिंह देव का वर्णन कुछ दूसरे रूप में होता है, ज्यादा क्रोध में उसकी जरूरत पड़ती है भक्तों को, तो वो लोग चाहते हैं कि भगवान ऐसे क्रोध में मारे असुरों को। लेकिन भगवान कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहते, ये उनका स्वभाव है, उनके भीतर में इतना आनंद भरा हो, वही स्वयं आनंद है। और आप जानते हैं कि मनुष्य की प्रसन्नता उसके होठों पर, उसके आंखों पर, उसके गाल पर, उसके ललाट पर ही प्रस्फुरित है। तो पता चल जाता है कौन आदमी विषाद में है, कौन प्रसन्न है, भीतर की प्रसन्नता छिप नहीं पाती। और भीतर यदि कोई दुख हो तो कितना भी जोर लगावे आदमी, बाहर प्रसन्नता नहीं आ पाती, नहीं आ पाती। तो इस तरह से भगवान की हंसी, भगवान के अलखें, भगवान के गाल नाक, सब कुछ आनंद का सरोवर है। अब तो जिन भक्तों को भगवान की छवि देखने को मिली होगी वही जानते हैं, अथवा मन में जो ध्यान करते हैं पढ़ते हैं, केवल पढ़ करके भी जब इतना आनंद आता है तो देख करके क्या होगा। वास्तव में कभी कभी पढ़ने पर मन आनंद में सराबोर हो जाता है। यह क्रूर जी इस तरह से भगवान का अंगों का वर्णन करते हैं, मनोरथ करते जाते हैं। द्रक्षामिनूनं सुखपोलनाशिकं स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं वै प्रचरन्ति मे मृगा। कैसे आप मानते हैं कि आप मुकुंद के मुख को देखेंगे, क्योंकि जो लोक में या वेद में शास्त्र में शुभ लक्षण कहे गए हैं वे सब हो रहे हैं, डायरेक्ट हो रहे हैं, मृग मेरे दाहिनी ओर निकल रहे। खास करके सवेरे कोई व्यक्ति किसी यात्रा पर चले तो उस समय कुछ जीवों का दर्शन हो और अनुकूल गति से दाहिने तरफ तो बहुत शुभ माना गया है। उस शुभ है अपने अपने मति के अनुसार आदमी शुभ मानता है। समय देखा है जब पहले प्राइमरी स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, जिस दिन परीक्षा का समय होता था उस दिन भगवान शिव के पास जाते थे और कलम रखते थे शिव जी के पास, हमारा शुभ हो कि हम अच्छा से पास हो जाए। और पढ़ने से पास हो गए कि अब शिव जी लिखेंगे क्या तुम्हारे लिए। लेकिन यह आस्था है, वास्तव में देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन अब शुभ की पराकाष्ठा क्या थी, अच्छा नंबर आ जाए, बस यही शुभ की पराकाष्ठा। क्रूर जी के लिए सबसे बड़ा शुभ है कृष्ण से भेंट होना, भगवान को देखना, ये शुभ। कोई व्यक्ति सवेरे निकले तो क्या शुभ तो होगा ही, लेकिन शुभ को इतना छोटा नहीं रखना चाहिए, बहुत हाई शुभ की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह शुभ हो, यह शुभ हो, यह शुभ। एक व्यक्ति हमारे साथ था, महाराज जी का शिष्य भी है, गोपाल कृष्ण महाराज, कपिंद्र नाम। हम लोग एक बार कुंभ मेला में थे, वो साथ में थे, बहुत पहले की बात। तो वो कहते हैं कि महाराज जी आज हमारी दाहिनी आंख फड़क रही है, लगता है कि बहुत शुभ है। तो मैं कहा क्या शुभ का अनुमान करते हैं, आज लगता है बहुत अच्छा प्रसाद मिलेगा खाने का, यही शुभ की इतिश्री हो गई। आज बहुत अच्छा प्रसाद मिले, वो प्रसाद भावना नहीं थी, भोजन की भावना। तो मैं कहा कि क्या है इससे आपका तात्पर्य है, क्या भोजन मिलेगा, क्या प्रसाद मिलेगा, जो भी मिले बहुत स्वादिष्ट मिलेगा। अच्छा, ऐसे ऐसी बातें कहते। तो वो कहे कि देखिए हम आज चलते हैं आपके साथ, जॉब करते हुए निकले हम लोग सवेरे, वे कहते थे कि हम तो कहीं भी हमको भोजन मिल जाता है, फल मिल जाता है, मिठाई मिल जाती है, आप देखिए कैसे मिल जाते हैं। तो चले एक फल वाला बेचारा फल को सजा रहा था, पोछ रहा था, रख रहा था, अभी बोहनी का टाइम, तो उस फल वाले के पास वो खड़े हो गए। अभी तो शगुन शगुन हुआ ही था और फल वाले के पास खड़े हो गए, देखने लगे। फल वाला भी इनको देखा तो फिर चलने लगे, कुछ लगभग डेढ़ मिनट रुके होंगे, रुक करके चलने लगे। तो फल वाला बोला, क्या बात है बाबा जी, क्या देख रहे हैं, फल लेना है? तो कहते हैं नहीं, फल बड़ा सुंदर है, ऐसे फल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, बड़ा स्वादिष्ट फल। अतः हाँ बाबा जी, हम यहाँ से मंगाए हैं इसको, ये तो चलने लगे। तो और लेना है क्या? अतः नहीं, पैसा नहीं है, लेने की तो इच्छा की थी। ओ बेचारा सवेरे सवेरे सोचा कि साधु को ऐसे कैसे भेजे, उसका शुभ विचार कहा कि नहीं आइए आइए। तो वो कहते नहीं, रहने दो, हम जा रहे हैं, देख रहे फल इतना अच्छा है कि देख रहे। तो उनको तो लेने की इच्छा थी, पूरा नहीं नहीं आइए आइए, ले जाइए ले जाइए ले जाइए फल। तो एक बहुत अच्छा सेव दे दिया। मैं कहा सचमुच के आपको शुभ शकुन हो? लेकिन मैंने कहा ये शकुन तो 5 रुपए में भी लाया जा सकता है, तो आपका शुभ शकुन केवल 5 रुपए 4 रुपए कमाया ना, इसमें तो कोई बहुत दम नहीं है। शकुन मनुष्य अपनी चेतना के अनुसार सोचता है, ये शकुन हो जाए, ये शकुन हो जाए। अब शकुन होता है तो सोचता है कहीं यह ना हो जाए, यह ना हो जाए। क्या बाकी है इस संसार में, कौन दुर्दशा बाकी है बताइए? सोचता ये ना हो जाए, हो जा रे, फंसे हुए हैं जन्म मरण में संसार में, अब इससे ज्यादा दुर्दशा क्या होगी। और भगवान का नाम यदि जीव पर आ रहा है तो इससे ज्यादा शुभ शकुन क्या होगा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
तो मैं देखूंगा। अब अक्रूर जी यह सोच रहे हैं कि अहो दर्शन की बात छोड़ दीजिए, भगवान के गुणों से, जन्म से और कर्म से मिश्रित वचन ही जगत को सुंदर बना देते हैं, पवित्र कर देते हैं, शोभित कर देते हैं, जीवन दान देते हैं, उन्हीं प्रभु को मैं साक्षात देखूंगा। तो भगवान के कीर्तन की महिमा बता रहे हैं। जस्याखिलामि वहमि सुमंगलैर् वाचो विमिश्रा गुण जन्म कर्म भी जीवन्ति शुभन्ति पुनन्ति वै जगत् यास्ता विरक्तः शव शोभनामतः। श्री कृष्ण के जन्म और श्री कृष्ण के गुण, कृपालुत्व आदि गुण और जन्म और इनके गोवर्धन धारण आदि कर्मों को यदि कोई वाणी ले लेती है, इस वाणी में मिश्रित हो जाता है कि भगवान के जन्म की बात, कर्म की बात, गुण की बात, तो वे वाणियां ही, वे वचन ही जगत के समस्त जीवों को जीवंती जीवन प्रदान करते हैं, जिला देते हैं। उन वाणियों में वो शक्ति आ जाती है। अगर शुद्ध गुण कर्म जन्म की बात तो कही जाए तब तो क्या कहना है, केवल भगवान के जन्म कर्म गुण आदि से मिश्रित वाणी भी हो, थोड़ा थोड़ा भी उसमें भगवान का गुण आ जाता है, तो वे वचन ही जगत को जीवन दान दे देते हैं, शोभा बढ़ा देते हैं और पवित्र कर देते हैं। ऐसे प्रभु के चरण कमलों वंदना में करूंगा, उनको आज साक्षात देखूंगा। अहो मैं भाग्यम, मेरा कितना बड़ा भाग्य है जिनके कीर्तन की यह महिमा है, जिनके जन्म कर्म गुणों को बोलने की इतनी महिमा है, उनको आज मैं देखूंगा, मेरे भाग्य की कोई सीमा नहीं। धन्य हूं मैं आज, अद्भुत बात कह रहे हैं लेकिन बिल्कुल सत्य बात। हम लोग जीवन में बोलते हैं बोलते हैं, यदि कदाचित भगवान के कुछ गुण और नाम कर्म और जन्म की बातें भी यदि अपने वचन में मिला दें, विमिश्रा कर, यदि खाटी जन्म कर्म की ही बात गावे तब तो कहना ही क्या, हम संसार की बात करते हैं और उसमें कहीं भगवान के नाम गुण रूप लीला जन्म की बात मिला दिया तो फिर सारा जगत पवित्र हो जाता है उन्हीं बातों से। ये भगवान के जन्म कर्म आदि की महिमा है। विमिश्रावाच, यदि किसी को संपूर्ण रूप से भगवान के कीर्तन करने की फुर्सत नहीं है, पूरा पूरा भगवान में ही वाणी लगाने की फुर्सत नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप जो बोलते हैं उसी में कुछ मिलाइए भगवान के गुणों को। ऐसा कहा जाता है कि एक घड़ा दो घड़ा भी पानी हो लेकिन गंगा जी का एक बिंदु उसमें डाल दिया जाए तो गंगा जल बन जाता। तो भगवान के नाम में गुण में लीला में इतनी शक्ति है कि हमारे व्यवहारिक वचनों में भी यदि बीच बीच में कृष्ण कृष्ण नाम आता रहा या गोवर्धनधारी गिरधारी नाम आता रहा तो फिर हम ही नहीं जिएंगे, सारा जगत जी जाएगा। यह जीने का अर्थ है जीवन में उल्लास आ जाना, आनंद आ जाना, जीवंती शुभंती शोभा बढ़ा देते हैं और पुनंती पवित्र कर देते हैं। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
यह जिनके कीर्तन की महिमा है, जिनके नामोच्चारण आदि की यह महिमा है, उन्हीं प्रभु को आज मैं आंखों से देखूंगा। कहीं जब वाणी से भगवान के नाम बोलने की इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा सौभाग्य है, तो भगवान को आंख से देखने की कितनी महिमा हो सकती है। वही अक्रूर जी अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं। हमको यह श्लोक बहुत प्रिय लगा था शुरू में ही, भगवान की कथा और कीर्तन की महिमा कहने में इस श्लोक को लिया करता था। आज मुझे पुनः यह श्लोक याद स्मृति पथ में आने लगा। जस्या खिलामी बहमी सुमंगल वाचो विमिश्रा गुण जन्म कर्म। भगवान के जन्म कर्म कैसे हैं? अखिल अमीव हभी, अमीव का अर्थ होता है पाप, सारे पापों को ध्वस्त कर देते हैं वे वचन जिन वचनों में भगवान का थोड़ा भी नाम गुण रूप मिला दिया है, ध्वस्त कर देते हैं। और सुमंगल है, सुमंगल है, वैकुंठ देते हैं, भगवान का प्रेम देते हैं। विश्वास कीजिए, बोलना सबसे आसान काम है, बचने किम दरिद्रता, और वचन से ही हमको लोग जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है, केवल बोल करके हम संसार को पार कर जाएंगे। अब इतना सरल साधन क्या हो सकता है बताइए? हर कोई कहे मन से चिंतन करे तो मन पर तो कोई बस है नहीं, मन इतना शुद्ध नहीं है कि भगवान का चिंतन करेगा, लेकिन वाणी पर इतना कंट्रोल है कि इससे कुछ भगवान का नाम बुलवा सकते हैं और बोल करके भगवान के धाम जा सकते हैं। इस शब्द में इतनी शक्ति, इसीलिए भगवान के नाम गुण लीला, उनके जन्म अवतार कैसे लिए, कैसे गर्भ में आए, कैसे प्रकट हुए, भगवान की इन सब लीलाओं को कहना चाहिए, सुनना चाहिए। वाचो विमिश्रा गुण जन्म कर्म, बहुत से गुण हैं भगवान के, जैसे उनकी कृपालुता, जैसे मैं वर्णन कर रहा था, ऐश्वर्य सौभाग्यवान परम सुखद परम आकर्षक और परम सुलभ प्रेम सुलभ। जैसे वर्णन आ रहा था कि गोपियों के कुछ कुमकुम पर भगवान के चरण लगते हैं, गोपियों का कुछ कुमकुम भगवान के चरण में लगता है, इसके द्वारा यह अर्थ किया गया है कि भगवान के चरण प्रेम से अति सुलभ। यदि एक तरफ ब्रह्मा शिव आदि भगवान के चरणों की आराधना करते हैं, मुनिजन ध्यान धरते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वही चरण भगवान के गोपियां अपने छाती से सटा करके रखती हैं, वो सुलभ है तब ना। क्यों सुलभ है वो दुर्लभ चरण? क्योंकि गोपियों में प्रेम है, प्रेम जहां है भगवान के चरणों में सुलभ। तो ये भगवान के रूप है, भगवान का धाम जो कुछ भी है हमको केवल बोलने से मिलेगा, और बोलने में क्या दरिद्रता करनी है। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
सचावतीर्ण किल सात्वतान्वये, सचावतीर्ण किल सात्वतान्वये भुवो भार भुवो जिहिर निजच्छया भारावताराय भुवो निजच्छया। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए जो अपनी इच्छा से अवतरित हुए भगवान आए हैं इस जगत, ये उनके जन्म की विशेषता बताई जा रही। भगवान अपनी इच्छा से वैकुंठ से इस जगत में आते हैं और किस लिए? भुव भार जिहे, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए, निजच्छया अपनी इच्छा से। हम लोग क्या जगह जगह